तारीख 3 दिसंबर दिन मंगलवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं हूं मानसी दास। संसद में जया बच्चन ने की बलात्कारियों को लिंच करने की मांग, लेकिन क्या इससे रुक जाएंगे रेप के मामले?
आपके जो जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए ताकि केस जल्दी हो। दुनिया के बहुत ही कम देशों में है मौत की सजा, और जहां पर है वहां बलात्कार भी बहुत है।
भारी बारिश के कारण दीवार गिरी, 17 लोगों की मौत।
That is what we are told by the IMD also, that we need not to worry, but we have to be of course careful with the slowing.
विश्व विकलांग दिवस पर होगी खास रिपोर्ट।
किसी के पास पैर नहीं है तो उसके अपने जो चैलेंजेस हैं उसको अपनी आप स्ट्रेंथ बनाएं, और यही कि कैसे काम करना है इस पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और फिर उसे जलाने की खबर पर कल देश के संसद में भी चर्चा हुई, जहां कई नेताओं ने बलात्कारियों को कठोर सजा देने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने कहा कि बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए। फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप पर एक शक्तिशाली तूफान कमूरी ने दस्तक दी है। इस कारण यहाँ 240 किलोमीटर की तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम अधिकारियों का कहना है कि लुजान का दक्षिणी इलाका इस कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तूफान के कारण समंदर के नज़दीक रहने वाले और पहाड़ों के नज़दीक रहने वाले करीब 2,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजधानी मनीला में तूफान के चलते 12 घंटों के लिए सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2 हफ्ते तक चलने वाले जलवायु परिवर्तन की बैठक हो रही है। इस बैठक की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बैठक में शामिल हुए दुनिया भर के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या हम वाकई एक ऐसी पीढ़ी के रूप में परिभाषित होना चाहते हैं जिसने सब कुछ खत्म कर दिया हो। उन्होंने कहा, हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ से लौटना अब मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट सामने है और राजनेताओं को इसका समाधान तलाशना ही होगा। शैरलेट स्ट्रेक क्लाइमेट फोकल की निदेशक हैं। बतौर विशेषज्ञ वो सरकारों को जलवायु से जुड़ी सलाह देने का काम करती हैं। उनका मानना है, पिछले कुछ सालों में हमने सरकारी पक्ष की ओर से बहुत अधिक सक्रियता नहीं देखी है, लेकिन निजी क्षेत्र काफी सक्रिय रहे हैं। उप व्यवसायिक संस्थाएं, राज्य स्तरीय नगर पालिका, गैर सरकारी संगठन, ये सभी मिलकर काम करने की इन सभी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही वे खुद भी आगे आए, ये जरूरी है। क्लाइमेट फोकल की निदेशक शैरलेट स्ट्रेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ब्राजील और अर्जेंटीना पर स्टील और एल्यूमिनियम के व्यापार पर टैरिफ बहाल करेगा। उन्होंने दोनों देशों पर अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे अमरीकी किसानों और उत्पादकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पिछले साल ट्रंप ने ज़्यादातर देशों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में अर्जेंटीना और ब्राज़ील को छूट दे दी थी क्योंकि ये दोनों देश नए ट्रेड कोड के लिए तैयार हो गए थे। पत्रकारों द्वारा इस बात की सूचना मिलने के बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए वे सीधे व्हाइट हाउस से संपर्क करेंगे। मैं वित्त मंत्री पाउलो गुडेश से बात करूंगा। क्या एल्यूमिनियम पर भी? मैं उनसे इस संबंध में बात करूंगा। अगर ये सच है तो मैं ट्रंप को फोन करूंगा। उनके साथ मैं सीधे और स्पष्ट तौर पर बात कर सकता हूं। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के शब्द। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके वकील महाभियोग की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि मामले में निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए बुधवार को होने वाली सुनवाई में न तो ट्रंप रहेंगे और न ही उनके वकील। महाभियोग मामले की सुनवाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की न्यायिक समिति कर रही है, जो इस मामले की सुनवाई का दूसरा स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने वाली कंपनी के मैनेजर ब्रैड पार्किल का कहना है कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ के पत्रकारों के लिए अब परिचय पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के मालिक माइकल ब्लूमबर्ग आगामी राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी पर पहले से ही रूसी ऐप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने संबंधी एक प्रस्ताव को सहमति दे दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से जिस पर बीते तीन दिनों से चर्चा लगातार छिड़ी हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उनकी हत्या का मामला कल पूरे दिन संसद में गूंजा। तमाम सांसदों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। राज्यसभा सांसद जया बच्चन का एक बयान कल सुर्खियों में रहा। समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों को जनता के सामने लाना चाहिए और उन्हें लिंच कर देना चाहिए, यानी पीट पीट कर मार देना चाहिए। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा।
अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड
प्रॉपर्ली।
कल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि बलात्कारियों को जल्द फांसी मिले, इस मांग को लेकर वो आमरण अनशन शुरू करने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2012 में निर्भया मामला हो, 2013 का शक्ति मिल मामला या फिर 2018 का कठुआ मामला, आखिर हिंदुस्तान में बलात्कार के मामले रुक क्यों नहीं रहे? और क्या लिंच करना या मृत्युदंड देना बलात्कार के मामलों पर रोक लगाने का रास्ता हो सकता है? यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने संपर्क किया ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन से।
मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो 2012 वाली घटना थी, तब इतना आंदोलन किए और उसके बाद इतने वर्षों बाद अभी भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, और वो सिर्फ हैदराबाद वाली घटना को लेकर के हम लोगों को आक्रोश नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि कितनी सारी और घटनाएं इसी आजकल में ही पिछले 2-4 दिन में ही हुई हैं, ये देखने समझने की बात है। और वो सिर्फ जो बाहर होती हैं, सड़कों पर होती हैं, सिर्फ उसी तरह के बलात्कार के बारे में भी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए कि ज्यादातर जो मामले होते हैं बलात्कार के, वो जाने पहचाने लोग करते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि लोग महिलाओं से सहमति मांगना पड़ेगा, इस समझदारी के लिए कोई सम्मान नहीं है।
अगर हम ये देखें कि जब निर्भया केस भी हुआ था और काफी उसको मीडिया ने भी उठाया, काफी आंदोलन भी हुआ पूरे देश में और कई नियम कानूनों को फिर बदला भी गया है, क्यों नहीं ये घटनाएं रुक पाती हैं?
मेरा मानना है कि घटनाएं जो हैं वो किसी कानून से रुक जाएंगी, बात वो नहीं है। बात है कि कानून को लागू होने के लिए भी जो माहौल चाहिए उसको बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जैसे कि आपके जो जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए ताकि केस जल्दी हो। पुलिस और अदालत वगैरह में जो महिलाओं के लिए जो बहुत ही खराब माहौल रहता है, जिसमें महिला को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है अगर उसने बलात्कार का आरोप लगाया है, तो इस माहौल को बदलने की जरूरत है। और ये जब तक ये नहीं बदलेंगी, जब तक ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि महिलाओं को हर अधिकार है कि वो बाहर रहें कभी भी, दिन में रात में, और उनके सुरक्षित तरीके से बाहर रहने के लिए वो सरकारें जवाबदेह हैं, उनको ये माहौल बनाना होगा।
जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमेशा ये डिमांड उठने लगती है कि कैपिटल पनिशमेंट हो इस मामले में, और तुरंत हो, बिल्कुल जल्दी हो। क्या कैपिटल पनिशमेंट इसका कोई सॉल्यूशन है?
जहाँ तक मौत की सजा की बात है, लिंचिंग की बात है, कहीं से भी बलात्कार का रोकथाम इससे नहीं होता है। दुनिया के किसी जगह पर ये नहीं हुआ है, दुनिया के बहुत ही कम देशों में है मौत की सजा, और जहाँ पर है वहाँ बलात्कार भी बहुत है। अमेरिका की ही बात ले लीजिए, वहाँ मौत की सजा है, और वहाँ पर देखिए कि अभी अभी शानल मिलर नाम की जो एक महिला है जिसके साथ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में बलात्कार हुआ था, उसने एक किताब लिखी है नो माई नेम, मेरा नाम जानो, जिसमें उसने पूरे जो तथाकथित न्याय की प्रक्रिया, वो महिलाओं के लिए, पीड़ित के लिए कितना अन्यायपूर्ण होता है, इसको वो बताती है। और उसकी वजह से एक तरह से सजा ही न होने वाला माहौल रहता है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक तो बात ये है कि लिंचिंग जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा किसके साथ होती हैं? महिलाओं के साथ होती हैं। आप सोचिए कि डायन समझ करके हत्या करना किसके साथ होता है? ये लिंचिंग ही तो है, और ये हमारे पूरे देश में होता है, महिलाओं के साथ होता है। इसलिए लिंच मॉब के जो तथाकथित अन्याय है, ये कहीं से भी महिला पक्षधर तो बिल्कुल ही नहीं।
मौत की सजा से बलात्कार पर रोक लगेगी या नहीं, विश्लेषण कर रही थी कविता कृष्णन। तमिलनाडु के दक्षिणी शहर कोयम्बटूर में मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। कोयम्बटूर से 35 किलोमीटर दूर मेट्टुपालयम में 4 घरों की दीवार के गिरने से ये मौतें हुई हैं। हालांकि अधिकारियों ने बीबीसी से कहा है कि इस साल की बारिश 2015 में हुई भयंकर बारिश की तुलना में काफी कम है। 2015 में लगातार बारिश के कारण चेन्नई शहर के कई इलाकों में पानी घुस आया था। सुनिए बंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
भारी बारिश के कारण किसी घर की एक दीवार का गिरना या घर का गिरना सामान्य हो सकता है, लेकिन जो मट्टुपालयम में हुआ वो थोड़ा अलग है। यहाँ एक घर के कॉम्पाउंड की दीवार पड़ोस के 4 छोटे घरों पर गिरने से ये हादसा हुआ और ऐसा माना जा रहा है कि पीड़ितों को शायद ये भी नहीं पता चला कि उन पर दीवार गिरी है। माना जा रहा है कि ये दीवार तट के 5:30 से थोड़ा पहले गिरी होगी। कॉम्पाउंड की दीवार इन छोटों घरों से काफी ऊपर बनी हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा भारी बारिश के कारण हुआ। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में अचानक उत्तर पूर्वी मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। तमिलनाडु के राजस्व और राहत सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने बीबीसी को बताया,
2015 was, we were just coming out of another spell in November, middle and,
हमारा इस हादसे को 2015 दिसंबर के बारिश के साथ तुलना करना ठीक नहीं होगा। 2015 का हुई बारिश बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई थी और एक ही दिन में 30 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। राहत सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन के शब्द। 2015 की इसी महीने की पहली तारीख को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कई आसपास के जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति आ गई थी। इस समय भी लगातार बारिश की वजह से तमिलनाडु के कई जिलों में घुटनों तक पानी भर गया है, लेकिन डॉक्टर जे राधाकृष्णन कहते हैं, हमें मौसम विभाग ने कहा है कि ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह साधारण बारिश है, लेकिन हमें एहतियातन निचले इलाकों पर खास नजर रखनी होगी। हमारे राज्य में करीब 4,300 निचले इलाके हैं। डॉक्टर जे राधाकृष्णन के शब्द। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक इसी तरह की बारिश होते रहने की संभावना है, लेकिन ये बात तो साफ है कि प्रकृति के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी, बेंगलुरु।
महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के गठबंधन से आखिर सरकार तो बन गई, लेकिन राजनीतिक हलचल फिर भी जारी है, खासतौर पर बीजेपी के खेमे में, जहां सरकार ना बना पाने के बाद अब पार्टी में टूट की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम पंकजा मुंडे का सामने आ रहा है। पंकजा मुंडे ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर 8-10 दिन के भीतर अपना फैसला बताने की बात लिखी थी। अब उन्होंने अपने ट्विटर के बायो में भी बदलाव किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का साथ छोड़कर वो किसी दूसरे दल का दामन थाम सकती हैं। आखिर पंकजा मुंडे की नाराजगी की क्या वजह है, समझने के लिए नवीन नेगी ने ही बात की बीबीसी मराठी संवाददाता नीलेश धोत्रे से।
ऐसे लगता है कि मतलब जब से वो इलेक्शन हारी है उसके बाद वो थोड़ी सी बिल्कुल मायूस है और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसको उसके पार्टी में जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था या पार्टी ने उसका साथ देना चाहिए उतना उसका साथ उसे पार्टी में नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके चलते वो नाराज़ है। उसको ये भी लगता है कि उसके जो चचेरे भाई है धनंजय मुंडे वो NCP से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि मतलब उनको जिताने में बीजेपी का हाथ रहा है, ऐसी चर्चा है, ऐसे कुछ पॉलिटिकल विश्लेषक महाराष्ट्र में बात करते रहते हैं।
क्या पंकजा मुंडे ये भी देख रही हैं कि अगर उनको राज्य की राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है तो वो चाह रही हैं कि उनको केंद्र में आगे बढ़ाया जाए?
ऐसे तो नहीं है, उनका पूरा फोकस राज्य की राजनीति पर ही है, क्योंकि उसने जिस तरह से जो फेसबुक पोस्ट लिखी है उसने तो साफ तौर पे लिखा है कि मैं 12 तारीख को, मतलब उसके पिताजी गोपीनाथ मुंडे जी का 12 तारीख को जन्मदिन होता है और उस वक्त वो आगे की जो उसकी राजनीति है, आगे की जो भी वो मंशा है वो तय होगी। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो शायद शिवसेना में जा सकती, क्योंकि जिस तरह का वर्ड उसने यूज़ किया है, मावले, मतलब सैनिक या फिर जो भी सोल्जर्स है उसको मावले करके एक वर्ड यूज़ किया जाता है मराठी में, जो आज तक हमेशा शिवसेना ने यूज़ किया है उसके कार्यकर्ताओं को, बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं को कभी ये वर्ड ज़्यादा तौर पे यूज़ नहीं किया है। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद वो शिवसेना में जा सकती है।
क्या शिवसेना के साथ उनका झुकाव कभी और पहले कभी ऐसा नजर आया था?
देखिए, उनके परिवार के मतलब मुंडे परिवार के और ठाकरे परिवार के बहुत करीबी संबंध रह चुके हैं, अभी भी है। ये उद्धव ठाकरे को अपना भाई मानती है पंकजा मुंडे, और जब गोपीनाथ मुंडे जब थे और बाला साहब ठाकरे जब थे तो उनके भी अच्छे गहरे रिश्ते थे। और अभी उन्होंने उद्धव ठाकरे को अभिनंदन वाला ट्वीट किया था 28 तारीख को, जिसका अभी थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है ट्विटर के जरिए ही, उनको धन्यवाद दिया है और उनको कहा है कि गोपीनाथ मुंडे के स्वप्न का जो महाराष्ट्र है वो जिस तरह का महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं उसी तरह की महाराष्ट्र बनाने के लिए हम कटिबद्ध है।
और अगर पंकजा मुंडे बीजेपी से निकलती हैं बाहर और शिवसेना या किसी भी दूसरे दल में जाती हैं तो बीजेपी के लिए खुद कितना बड़ा नुकसान होगा? ये
मेरे ख्याल से ये दोनों पार्टियों के लिए, मतलब अगर वो शिवसेना जाती है तो भी शिवसेना को थोड़ा प्रॉब्लम होगा और अगर वो भाजपा से निकलती है तो भी प्रॉब्लम होगा। एक तो वो कद्दावर नेता है, उसका फॉलोइंग बहुत बड़ा है, वंजारी समाज जो है वो उसके पीछे है। मराठवाड़ा रीजन और बाकी रीजन की अगर बात करें तो उसके फॉलोअर्स बड़े तादाद में है। ओबीसी नेता है, इसलिए बीजेपी का ओबीसी चेहरा बताया जा सकता है। और अगर ओबीसी चेहरा चलाया जाता है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक है महाराष्ट्र में इस वक्त, जो काफ़ी हद तक माना जाता है कि बीजेपी के साथ है, तो वो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, अगर शिवसेना के पास वो जाती है तो उसका कद देखते हुए उसको एक बड़ा ओहदा देना बहुत ज़रूरी होगा, जिसको मंत्री बनाना पड़ेगा या पार्टी में बहुत बड़ा पोजीशन देना पड़ेगा। और अगर वो पार्टी की बड़ी नेता बनती है, मंत्री बनती है, तो कहीं ना कहीं उसके संबंध सुप्रिया सुले और धनंजय मुंडे से आएंगे। और माना जाता है कि चचेरे भाई धनंजय मुंडे के साथ तो उसकी बिल्कुल बनती नहीं, और सुप्रिया सुले के साथ भी उनकी नहीं बनती है।
झारखंड में चुनावी पारा अब और बढ़ने लगा है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल यहां रैली की, तो बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री ने भी जोर शोर से कल चुनाव प्रचार किया। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को होना है। इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक पार्टी 81 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि ये चुनाव राज्य और उनकी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
देखिए, चुनाव झारखंड प्रदेश की हो रही है तो स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य को बने हुए 19 साल हो गए, पिछले 5 वर्षों से बीजेपी की सरकार चल रही है, तो जितनी लोगों ने उम्मीदें की थी कि सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो या विकास अधिक होगा, फिर बहुमत की सरकार, फिर मुख्यमंत्री भी गैर आदिवासी, तो ये कई एक मिथक था, उसको तोड़ करके सरकार को लोगों ने बनाई थी। लेकिन लोगों को बड़ा निराश किया, जो यहाँ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, जिस पर ये जो काम होना चाहिए थे, जिनके लिए काम करने चाहिए थे सरकार को, उस पर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया।
पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार भी नहीं बनती अगर आप ना होते। मेरा मतलब है कि झारखंड विकास मोर्चा के 8 में से 6 विधायक वो पाला बदल कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए।
नहीं, यह बात आपने ठीक कहा, और इसी कारण से हमको तोड़ा भी उन्होंने, चूंकि उनको इस बात की एहसास थी, चूंकि उनके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत तो थी, लेकिन उनको लगा होगा कि वे आशु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बाएं दाएं हो सकते हैं, तो उससे बचाव के लिए, फिर भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए भी उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, चूंकि उस बात को वो जानते थे कि JMM का जो कंस्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में है, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा है तो इसकी पकड़ पूरे सर्वत्र राज्य भर में है, सभी वर्गों में, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के बीच में है। तो इनको लगता था अगर झारखंड विकास मोर्चा रह गया खड़ा तब तो आगे हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेगी।
झारखंड में पूर्ण बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला, लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक 19 साल हो गए हैं राज्य के गठन को, तो ये राजनीतिक स्थिरता जो है, जो अस्थिर माहौल है यहाँ का, कभी उलट पलट चलती रहती है, ये क्यों?
देखिए, चुनौती तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि जितना भी प्रयोग झारखंड में हो सकता था वो सब प्रयोग हो चुका, और आज जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो कोई भी है तो सब लोगों ने झारखंड में काम किए हुए हैं, हम भी काम किए 28 महीनों तक, तो अब लगता है कि जनता को चुनने में अब दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी।
भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही थी, इस बार आप भी 81 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या बात है कि गठबंधन क्यों इस बार नहीं हो पा रहे हैं राजनीतिक दलों के बीच?
सामान्य तौर पर लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम गठबंधन के हिमायती रहे हैं। 2006 में पार्टी बनाए और 2009 में पहला आम चुनाव हुआ तो हमने गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव भी ऐसे ही हुआ, गठबंधन किए हम सब लोगों ने, महागठबंधन बना। लेकिन एकदम चुनाव ऑन हो गया, बातें चलती रही, तो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ और दूसरे दिन से हमने गठबंधन की कोशिश की। मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, हमने देखा कि कोई रुचि नहीं ले रहा है। तब हमने अगस्त से अपने आप को सिमटना शुरू कर दिया कि हमने सोचा कि अब ये नहीं करेंगे।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। और अब आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की आज सुर्खियां क्या है। भूमिका हमारे साथ स्टूडियो में अखबारों के साथ हैं।
जी मानसी, जिस तरीके से हैदराबाद का मामला है वो सारे अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स लिखता है अब और निर्भया नहीं, बनेगा सख्त कानून, जिसकी चर्चा भी हमने आज अपने बुलेटिन में की। इसके अलावा अयोध्या पर फैसले को पहली चुनौती, जमीयत ने कहा पूर्ण न्याय नहीं हुआ, यानी जो पहली पुनर्विचार याचिका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो अयोध्या विवादित जमीन थी उसको जो लेकर फैसला आया था उसे पहली एक पुनर्विचार याचिका आई है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बयान भी आज लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में उनकी बेटी के लिए सुप्रिया सुले के लिए कैबिनेट पद की एक ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय घमासान जो है वो अभी भी मचा हुआ है, जैसा अभी आपने बताया भी, तो ये एक अहम खबर है। उसके अलावा क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे में लाने की सिफारिश की है और बोला है कि 7 जजों की पीठ इस पर फैसला करे। ये सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक आवेदन किया गया है और साल 2024 तक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे, ये अमित शाह का बयान है एक रैली के दौरान।
अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका। कुछ दिन पहले बिहार न्यायिक सेवा के नतीजे आए। इन नतीजों के बाद पटना की अर्चना कुमारी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल उनके पिता कोर्ट में चपरासी के पद पर काम करते थे और अब अर्चना अदालत में जज बनकर पहुंच रही हैं। सर्वेंट क्वार्टर से लेकर जज की कोठी तक उनकी जिंदगी का सफर सुनिए पटना से हमारी सहयोगी सीतू तिवारी से।
अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद होती है उस और अगर आप कोई भी मन में एक बार सोच लेते हैं तो ईश्वर अपने आप से रास्ता बनाता है।
ये आवाज है 34 साल की अर्चना की। अर्चना जिनके पिता गौरीनंदन प्रसाद बिहार के सोनपुर रेलवे कोर्ट में चपरासी के पद पर थे लेकिन उनकी बिटिया जज बन गई है। साल 2018 में हुई 30वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में अर्चना ने सफलता हासिल की है। सामान्य श्रेणी में 227वीं और ओबीसी कैटेगरी में उनको 10वीं रैंक मिली है। जज की कोठी के पीछे अपने एक कमरे के सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए 6 साल की मासूम अर्चना ने जज बनने का सपना देखा और उसे जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हुए पूरा किया। वो कहती हैं,
मेरे दिमाग में कभी इस फील्ड के अलावा कोई दूसरा फील्ड आया ही नहीं, ख्याल में भी नहीं आया। इवन मैंने कोई एग्जाम तक नहीं अपीयर हुई मैं कभी, मैंने सिर्फ जुडिशरी दिया। जब भी आंखें बंद करती थी तो मुझे बस कोर्ट ही दिखता था और मुझे वो कुर्सी ही दिखती थी।
मूल रूप से पटना के धनरुआ थाना अंतर्गत मानिक बिघा गाँव की अर्चना को बचपन में ही अस्थमा की बीमारी थी और घर में गरीबी का डेरा था, लेकिन 4 भाई बहन में सबसे बड़ी अर्चना ने हार नहीं मानी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के वक्त उनके पिता गौरीनंदन प्रसाद की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें घर चलाने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। अर्चना की माँ प्रतिमा देवी बताती हैं,
जैसे इसके पापा का डेथ हो गया तो सब मेरे ससुराल वाले भी लड़की को पढ़ा के क्या करना है, ये बोले नहीं हम पढ़ाएंगे, पापा कुछ लेके तो नहीं गए हैं, सब यहाँ ही हैं। उसी बीच में थोड़ा सा परेशानी हुई तो लोग बोले ही नहीं शादी उदी कर दो।
सामाजिक दबाव के चलते अर्चना की शादी जल्दी कर दी गई, लेकिन अर्चना खुशकिस्मत निकली। पति राजीव रंजन ने उनका साथ दिया और कानून की पढ़ाई के लिए पहले पुणे यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली भेजा। पुणे जाते समय अर्चना के लिए ये पहला मौका था जब वो बिहार के बाहर जा रही थी। हिंदी मीडियम में पढ़ी अर्चना के रिश्तेदारों ने उनकी पढ़ाई का ये कहकर विरोध किया कि वो कानून की अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। पटना के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत पति राजीव कहते हैं,
बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, जो मेहनत किए आज तक लगे रहे साथ में, हमारा पूरा फैमिली और मायके वाले लोग सबका कोऑपरेशन।
अर्चना की कहानी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक साधारण सी लड़की की कहानी है, जिसने बड़े सपने देखे और परिवार के सहयोग से उसे पूरा भी किया। सीतू तिवारी, बीबीसी पटना।
माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है, हिम्मत करो जीने को अभी उम्र पड़ी है। फैज की इन पंक्तियों को सच बना दिया है अर्चना ने। एक ऐसी ही हिम्मत की और कहानी आपको सुनाते हैं। आज विश्व विकलांग दिवस है और आपके लिए हम लाए हैं जज्बे और हौसले की एक और कहानी, जो बताती है कि हिम्मत है तो कुछ भी असंभव नहीं। ये कहानी है एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की, जो कई मुश्किलों को पार कर वकील बने। सुनिए बीबीसी संवाददाता सूर्यांशी पांडे की रिपोर्ट।
आज है 3 दिसंबर और ये तारीख संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाता है। और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा और हौसला देगी। ये कहानी है दृष्टि बाधित पंकज सिन्हा की, जो करीब 13 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर वकील काम कर रहे हैं।
मेरे पैदा होने के बाद, क्योंकि मैं फ्रॉम बर्थ ब्लाइंड था, तो जैसे ही व्हेन आई वाज बोर्न दे माय पेरेंट्स कंसल्टेड डॉक्टर्स। तब बिहार यूनिफाइड बिहार था, तो रांची बड़ा शहर होता था, तो उन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने बोला देखो ये इसकी आईज अभी सही तो नहीं हो सकती, तो वहां से ये तो क्लियर हो गया था कि डिसेबिलिटी तो मेरी क्योर नहीं हो सकती।
38 साल के पंकज सिन्हा झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। पिता का नाम अजीत सिन्हा है, जिनका वकालत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ उषा देवी पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। पंकज सिन्हा के 5 भाई और एक बड़ी बहन है। उनका परिवार उन्हें प्रोफेसर बनाना चाहता था और इसके लिए सेंट स्टीफन्स में पंकज सिन्हा ने हिस्ट्री ऑनर्स में डिग्री भी हासिल की। लेकिन इश्क तो काले कोट से था, तो पंकज ने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से वकालत की। लेकिन वकालत में तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और दृष्टिबाधित होने से उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं आई।
जो रीडिंग मटेरियल्स है वो तो देखिए ना पहले एक्सेसिबल थी ना आज एक्सेसिबल है, वो इनएक्सेसिबिलिटी तो प्रॉब्लम हमेशा रही। जब मैं लॉ फैकल्टी में था तो हमारी एक एविडेंस की टीचर थी, वो मुझे बाई मेल जो है वो सॉफ्ट कॉपीज भेज देती थी, या कुछ फ्रेंड्स थे वो बुक्स वगैरह जैसे पढ़ देते थे तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता था, तो कई बार उससे और अपने ब्रेल में नोट्स बना लेता था।
तो ये तो तब की बात हुई जब पंकज लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, अब तो वो वकील हैं, वो भी हाई कोर्ट में। तो क्या हाई कोर्ट में दृष्टिबाधित वकीलों के लिए किसी तरह की सुविधाएं हैं?
यहाँ अगर आप हाई कोर्ट में देखेंगे तो एक लिफ्ट है, लिफ्ट लगे हैं और कुछ रैम्प्स वगैरह बने हैं, लेकिन जैसे कि जब अपोजिट का लॉ काउंसिल अगर कोई केस फाइल कर रहा है तो उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में मटेरियल दे दे, चाहे वो उसे सीडी में दे दे, पेन ड्राइव में दे दे, या उसको ब्रेल में करवा के दे। इस तरीके की शायद ना तो अवेयरनेस है हमारे यहाँ पर, ना लोग इतना बॉदरेशन लेते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए मुझे आज पढ़ना हो तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं, मतलब आज मैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ नहीं सकता।
इन तमाम दिक्कतों के बावजूद अगर दृष्टिबाधित पंकज सिन्हा यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो दोस्त कुछ भी मुमकिन है।
किसी के पास पैर नहीं है तो उसके अपने जो चैलेंजेस हैं उसको अपनी आप स्ट्रेंथ बनाएं, और यही कि कैसे काम करना है इस पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है।
पंकज सिन्हा वही वकील हैं जिन्होंने 2011 में बहरे लोगों को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के हक में केस लड़ा था और जीता भी था। यह केस काफी प्रसिद्ध हुआ था।
रिपोर्ट सुना रही थी सूर्यांशी पांडे। कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने वाले कंपनी के मैनेजर ब्रेट पार्कल का कहना है कि ब्लूमबर्ग न्यूज के पत्रकारों के लिए अब परिचय पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उत्तरी सीरिया के 2 अलग-अलग इलाकों में हुई हिंसा में कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इदलिब प्रांत के मारेत एल नुमान के बाजार पर हुई हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग जख्मी हुए हैं। फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप पर एक शक्तिशाली तूफान कमूरी ने दस्तक दी है। इस कारण यहाँ 240 किलोमीटर की तेज हवाएं चल रही हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके वकील महाभियोग की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मामले में निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए बुधवार को होने वाली सुनवाई में न तो ट्रंप रहेंगे और न ही उनके वकील। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी पर पहले से रूसी ऐप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने संबंधी एक प्रस्ताव को सहमति दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ब्राजील और अर्जेंटीना पर स्टील और एल्यूमिनियम के व्यापार पर टैरिफ बहाल करेगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण सुनिएगा दिन भर आज शाम को। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।